And if such a measure can convince the parents to send their girls to school, why not?
और हटाया क्यों ये डिसीजन वापस क्यों लिया?
Because why not?
There is no power on earth that can undo one star.
I love the Muslims. I think they're great people.
Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me,
Assalamu alaikum. Welcome to the podcast talk. My name is Akif. My taluk Sin se hai. Mere saath aaj baithe hue hain one of the up and coming real estate tycoons of Pakistan aur fitness enthusiast hain aur chef bhi hain Saad.
Assalamu alaikum.
सिंगल भी हैं, ये भी बता दें हम.
सिंगल भी हैं.
और मैं कराची से हूँ. मैं पूरे सिंध से नहीं हूँ, मैं सिर्फ कराची से हूँ.
और हमारे साथ बैठे हुए हैं जनरल अप एंड कमिंग टाइकून, और इनको भी क्रिकेट का बहुत शौक है, और इनका नाम है सुफियान, और इनका ताल्लुक है
कराची से. अस्सलाम वालेकुम.
कराची से. और तहा है हमारे साथ, जो तहा जो अपना लगेज भूल जाते हैं गाड़ी में.
अस्सलाम वालेकुम.
क्या हाल है तहा?
अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह.
साथ क्योंकि आप हमारे साथ साथ हैं, तो मैंने कहा यार आज हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलरली फिटनेस रिलेटेड. अगर किसी को नहीं पता, मिसबाह उल हक जो है हमारे हेड कोच हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने जो है स्वीट्स और बिरयानी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए बैन कर,
स्वीट्स और
बिरयानी.
बिरयानी,
यस, उन्होंने बैन कर दिया क्योंकि उन्होंने क्योंकि जो
बिरयानी क्या होता है यार, बिरयानी को बिरयानी क्या हो गया?
असल में थोड़ा
अंदरूनी सिंस है.
अच्छा, मुझे दो तीन मिनट लगे प्रोसेस कर सके, समझ नहीं आ रही बिरयानी क्या होता, कोई अरब
बदल के सिंस नहीं
भाई. सिंध में बहुत डाइवर्स प्रोविंस है, ठीक है, ऐसी बात नहीं.
नॉर्दर्न सिंध.
कभी आपने सिंधी बिरयानी खाई है क्या?
बिल्कुल
सिंधी बिरयानी.
अच्छा, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मिसबाह उल हक हैज चेंज द डाइट एंड न्यूट्रिशन प्लान्स फॉर प्लेयर्स इन द डोमेस्टिक टूर्नामेंट एंड द नेशनल कैंप. नो मोर बिरयानी और ऑयल रिच, अच्छा, नो मोर बिरयानी और ऑयल रिच रेड मीट मील्स और स्वीट डिशेस फॉर द प्लेयर्स नाउ. और मिसबाह उल हक साहब जो है वो अभी उनका ड्यूल रोल है, हेड कोच भी हैं और चीफ सेलेक्टर भी हैं. तो क्या ख्याल है साथ
इसमें? मेरा ख्याल है कि सॉरी साथ को मैं इंटरप्ट करूं कि यानी आप इनके अंडर तो बिल्कुल भी बास्केटबॉल, अगर वो बास्केटबॉल ही कोच होते तो नहीं काम कर सकते.
क्यों भाई?
आपका खाना ही मैंने देखा है कि मिठाई होती है, ऐसे टाइम आते हैं
बिरयानी खाते हैं.
हाँ, इतना नहीं, बिरयानी खाने वाला बंदा नहीं लगता ये
तो, क्योंकि मेरे इस पे एक्यूजेशंस हो रही है इतनी बड़ी बड़ी. देखिए फिटनेस की बात हो रही है, आप खा कुछ भी लें,
लेकिन तो उन्होंने फिटनेस के लिए ही एकदम लिया कि हमें फिटनेस मेंटेन करने के लिए आपको ये चीज,
फिटनेस ठीक होना चाहिए, आप खा कुछ. मैं
इनके रूटीन बता रहा हूं, ये फिर जाते
फिर आप कह रहे हैं कि मिसबाह उल हक नहीं है,
ये खाने ये पेशावरी खावे जाते हैं और ये पुलाव खाने जो है पे क्वेटा खावे जाते
हैं. नहीं देखो साथ, इस पे आपका क्या ख्याल है?
मेरा ख्याल ये है कि मतलब हर प्लेयर का अपना एक होता है, रूटीन होता है. अगर कोई बिरयानी खा के और ये स्वीट डिश खा के परफॉर्म कर सकता है तो उसको आजादी होनी चाहिए. अब मोहम्मद शमी है, वो चर्च पी के जो है बॉलिंग कराते हैं और उससे नहीं होती बॉलिंग.
अच्छा, हमने ऐसी इल्जाम लगा दिया?
नहीं, ये रिपोर्ट्स आई हैं इसकी.
अच्छा,
allegedly,
जो लड़के खेलते थे उसके साथ, वो आदमी नहीं कर सकता. अब वो उनके क्राइटेरिया ये है, तो वो अब खाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए. इंजमाम उल हक कितना खा रहा
है इंजमाम उल हक साहब,
लेकिन परफॉर्मेंस की अब थी. अब जो प्लेयर खा रहा है और परफॉर्म नहीं कर पा रहा, आप उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन अगर 100% परफॉर्मेंस तो किसी चीज पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए.
देखिए मेरे ख्याल से इस पे ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको फिटनेस लाजमी नहीं है परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन फिटनेस आपको एक एज देती है जरूर.
ऑफ कोर्स,
तो वो मेरे ख्याल से वो विराट कोहली का जो सुफियान भाई शायद,
आई थिंक मिसबाह उल हक की एक बात है कि मिसबाह उल हक अपने जो लास्ट पार्ट ऑफ द करियर था उसमें भी वो सबसे फिटेस्ट प्लेयर थे हमारी टीम के. और अगर किसी को याद हो, जो लॉर्ड्स में उन्होंने टेस्ट जीता था इंग्लैंड में 2017 में या 16 में, जब उसने कोई सेंचुरी मारी थी इवेंचुअली वो लॉर्ड्स को जब उन्होंने जिताया था, तो वो जो पुशअप्स की एक सेलिब्रेशन थी जो आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने देखी भी थी और शेयर भी की थी. तो मिसबाह उल हक का शुरू से एक एज अ पर्सन एज अ स्पोर्ट्समैन उनकी ये बात रही है कि वो बड़े फिटनेस कॉन्शियस हैं. तो आई थिंक कमिंग फ्रॉम मिसबा उलक मैं इतना सरप्राइज नहीं हूँ, और मैं पर्सनली इस चीज़ के इतना अगेंस्ट हूँ भी नहीं. अगर किसी ने विराट कोहली का इंटरव्यू देखा हो जो बेसिकली वर्ल्ड कप के बाद मशहूर हुआ था थोड़ा, कि विराट कोहली कह रहा था कि जो एक ही कैच होता है दो डिफरेंट प्लेयर्स पकड़ते हैं, एक बंदा 3 सेकंड में भाग के पकड़ता है और एक बंदा 2 सेकंड में भाग के पकड़ता है. दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो 2 सेकंड में भाग के पकड़ता है उसकी अपनी नींद, उसका अपना खाना पीना और अपनी एक्सरसाइजेस सब कुछ टिप टॉप चल रही होती हैं, तो उसके लिए वो जो डिस्टेंस कवर करना है टू गेट दैट कैच वो बहुत रिलेटिवली कम हो जाता है. और मैटर ऑफ मतलब स्पोर्ट्स में एक एक सेकंड बहुत मैटर करता है.
यानी वो 3 सेकंड में गुड एफर्ट होगा और 2 सेकंड में गुड कैच होगा.
हाँ, जस्ट कैजुअल एफर्ट हो जाएगी वो. तो ये बहुत मैटर करता
है. लेकिन मेरी आर्ग्यूमेंट ये है क्रिकेट ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं इसके लिए आपको इतना फिट रहना पड़े.
नहीं, अगर आप इंजमाम उल हक की बात कर रहे थे अभी थोड़ा टाइम पहले, तो इंजमाम उल हक का मतलब उसके दुनिया में जब उसको इंजमाम उल हक बोलते तो दूसरी चीज हो जाती है कि रनआउट होता था. ये क्यों रनआउट होता था? क्योंकि भाई उसकी कभी फिटनेस मैच कर ही नहीं थी.
ऐसा प्लेयर्स जो है टैलेंट पे खेलते हैं ना, उनका टैलेंट क्योंकि इतना जबरदस्त होता है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं यार, ठीक है थोड़ा बहुत बिरयानी
बट ऑल्सो गुलाब जामुन. आई मीन विद द मॉडर्न डे गेम फिटनेस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस आ गया है. आप अगर बैट से देखें, जो बैट्स हैं, जो बैट्स की थिकनेस है वो बढ़ चुकी है पहले से, और जितना थिक बैट होता है as much as I can understand कि वो उसका जो शॉट की पावर होती है वो ज्यादा हो जाती है, ऑल द टाइम करना मुश्किल होता है. तो फिर ये चीजें भी आप फैक्टर इन करेंगे तो फिर कब तक आपका टैलेंट चलता रहेगा?
यानी टैलेंट आप उस वक्त इत्तेफाक करेंगे कि बाकी सारी टीम्स भी टैलेंट पे ही फोकस कर रही हो. आप दूसरी टीम्स जब फिटनेस पे फोकस कर रही है टैलेंट के टॉप के ऊपर, तो फिर आप सिर्फ टैलेंट पे इनहिसार करके नहीं बैठे रहेंगे, वरना फिर आपके पाकिस्तानी टीम वाला हाल होगा कि कभी आपने टैलेंट के बेसिस पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लिया और कभी आप हमारी जो फील्डिंग का भी जो इशू रहता है वो एक फिटनेस से उसका एक ताल्लुक है.
ऑल्सो अगर टैलेंट की बात है, ऐसा थोड़ी कि हमारे पास सिर्फ 20 लोग हैं और हम 20 लोग के टैलेंट की बात करें, हम उनके हार्डवर्क की बात ना करें. टैलेंट और बहुत बड़ा हुआ है हमारे पास, बट क्यों हम इनको प्रेफरेंस दे रहे होंगे? फिर
आपकी जब एक ही You have just one job. तो आप उसको कमिट करें ना, फिर आप
प्रोफेशनल स्पोर्ट में होता है, आप एथलीट हो, आपको पैसे मिल रहे हैं, बेयर मिनिमम कि आपको जो है अपनी फिटनेस रिक्वायरमेंट जो है वो रखनी चाहिए.
यानी अनलेस कि आप
पता नहीं उस चीज में आप अपनी जो सबसे चाहिए चीजों से दूर हो रहे हैं तो आपका दिल वैसे नहीं लगेगा.
ठीक है, तो फिर आप डिसाइड करें कि आपको कौन सी चीज कितनी चाहती है. यानी प्रायोरिटाइज तो आपको एट द एंड ऑफ द डे करना पड़ेगा. अनलेस कि आप कोई गोल्फ खेलते हैं जिसमें मेरे ख्याल से शायद कोई फिटनेस की जरूरत नहीं है, या स्नूकर
मुझे याद नहीं पड़ता है. गोल्फ का भी कोई बंदा देखा जो हट्टा कट्टा मोटा से हमसे और वो मार रहा. तो फिटनेस आई थिंक गोज विद एनी स्पोर्ट. आप उसके बगैर कैसे
सुपर स्पोर्ट नहीं हुआ ना अगर वो
मैं वही मैं आरी करूंगा कि हम कि गोल्फ इज गोल्फ अ स्पोर्ट.
क्रिकेट स्पोर्ट होता तो ओलंपिक
स्पोर्ट इन द
क्रिकेट ओलंपिक्स में आने वाला है शायद कह रहे हैं कि पॉसिबल है कि
वो ये रिपोर्ट से जिन्होंने कहा था कि मोहम्मद समी चर्च भी था उसी सोर्स से आ
रहा है. ये तो फिर साथ साथ को पता है
शुएब अख्तर के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोहम्मद समी विल कैरी अवर फास्ट बॉलिंग ट्रेडिशन एक टाइम था, लेकिन आप फास्ट बॉल करा ही नहीं सकते अगर आप इस तरह की जो आप कह रहे हैं ना कि
नहीं नहीं एक आदमी का नाम नहीं, हर आदमी पे नहीं, हर आदमी के अपने वो होता है.
अच्छा, तो यानी वो कह रहे हैं कि चर्च से उनको ये इफेक्ट मिलता था कि वो और तेज बॉल कराते थे.
अच्छा, मोहम्मद समी हमारे प्रीवियस एपिसोड सुन के खुश फील कर रहे होंगे.
चलो स्पीकिंग ऑफ फिटनेस, फवाद हुसैन के बारे में बात करते हैं, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड आईटी टेक्नोलॉजी स्पेस इनोवेशन
एवरीथिंग. हु केयर्स यानी हु केयर्स के किसके
क्या मतलब है? वी एज पाकिस्तानीज वी शुड केयर. हमारे तो
बड़े उनका किसी का भी बना दिया जाए उनको मिनिस्टर, यानी कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है.
क्यों नहीं पड़ता?
उनकी हरकतें और उनकी बातें वैसी ही रहती हैं.
आजकल उनके ट्वीट्स जो हैं प्रेजेंट एंड ओल्ड बड़ी मशहूर हो रही हैं. क्या ख्याल है सुफियान?
आई थिंक पिछले 5 एपिसोड से हमने अच्छी खासी उसकी हमने उसको फ्रेम कर दिया. फवाद चौधरी कैसा आदमी है, तो आई थिंक अब बस जस्ट एंड अदर टॉक हो
जाएगी. ट्वीट से आप किस तरह जज कर सकते हो एक बंदे को?
अगेन आप इस तरह देखेंगे तो बहुत सारे जनरल लिखते हैं कि ट्वीट्स आर ओन माय ओन पर्सनल ओपिनियंस, ट्वीट्स इज नॉट इक्वल टू एंडोर्समेंट,
रीट्वीट इज नॉट एन एंडोर्समेंट.
सो इफ यू जजिंग बाय दैट, बट अगेन देखें आप जब पब्लिक पर्सनैलिटी होते हैं. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल कोई जर्नलिस्ट अगर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो और वो कोई आके फजूल का ट्वीट कर दे, हालांकि उसने अपने बायो में लिखा हुआ है कि भाई ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, क्या उसको लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे? आप जब पब्लिक फिगर होते हो तो आपकी हर बात को लोग अगर सीरियसली नहीं भी ले रहे तो मजाक में लेके आपका मजाक जरूर उड़ाएंगे. तो आई थिंक बहुत ही बचकाना हरकतें हो रही हैं. अब जो फवाद ये पता नहीं खुद कर भी रहा है कि
यानी एक पुरानी ट्वीट भी मेरे ख्याल से एक नई ट्वीट भी इस हफ्ते मशहूर हुई है. यानी आई जस्ट फील सैड फॉर द गवर्नमेंट कि उनको इस तरह का बंदा रखना पड़ रहा है एज अ मिनिस्टर. यानी
मैं पूछ रहा था कि ट्वीट का मसला नहीं, मतलब ये कि उसके पास क्या है कि उसको जो है गवर्नमेंट में अभी तक मिनिस्टर रखा हुआ है. दूसरी ट्वीट के बाद ही निकाल देना चाहिए था उसको.
लॉल ये आकिफ से पूछे ना, आकिफ क्यों है भाई वो
रेलवे दे देना.
द पीपल हैव स्पोकन और
द पीपल हैव स्पोकन यानी उनको अपनी इतने सारे मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली है पीटीआई के पास, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सके.
नहीं होंगे पाकिस्तान में साइंटिस्ट, हम तो वियतनाम में बैठे हुए, लेकिन मुझे नहीं पता.
दूसरा मसला, दूसरा
ट्रेन ट्रेन देखो इतना हो गया कि
हमें फवाद चौधरी को,
फवाद चौधरी हो जाए हमारा मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है.
दूसरा मसला ये पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी, ये टेक्नोक्रेट्स नहीं है यहाँ पर. अगर कुछ होता है इस तरह का सिस्टम तो किसी भी अच्छे क्वालिफाइड आदमी को लगाया जा सकता है. अब जो एमएनए बनकर आएगा उसी को कहीं पर यूटिलाइज करना पड़ेगा. सिस्टम फ्लॉड है, अब उस पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता
इसमें. यानी सिस्टम भी एक तरीके से फ्लॉड है, और फिर हमारी इन जनरल पब्लिक के लिए हम लोग जो वोट भी जिसको देते हैं, हम वोटिंग या हमारा इलेक्टोरल जो प्रोसेस भी और जो हमारे प्रैक्टिस या कल्चर भी है, हम चाहते हैं कि अवामी बंदा हो जो लीडर. नॉर्मली यही होता है कि एक अवामी लीडर जो जिसकी अवामी तकरीरें हैं और अवामी अंदाज होता है वो आते हैं. नॉर्मली जो टेक्निकल लोग होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, उनका वो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं होते कि उनकी पब्लिक स्पीचेस बहुत कोई अच्छी होती हैं या उनका पब्लिक परसोना है कुछ तरह का हो कि वो अपनी कैंपेन को उस बेसिस पे रन कर सकें. तो या तो आपकी जनरल पॉपुलेशन जो है वो लोगों को उनकी कॉम्पिटेंसीज और उनकी क्वालिफिकेशंस की बुनियाद पर वोट दे, या वो इस बेस पे वोट दे कि ये बंदा बड़ी अच्छी तकरीर करता है और बड़ा अच्छा लताड़ता है और ये मोहल्लेदारी बड़ी अच्छी है इसकी और हमारे लोग हमारे शादी ब्याह में आता है और हमारी फौदगी में आता है, या आप इस बेसिस पे वोट दें या हमारे काम निकलवा देता है ये बंदा हमारे यहाँ. हमारे यहाँ वोट इस बेसिस पे मिलता है, हमारे वोट इस बेसिस पे नहीं मिलता कि कौन कितना क्वालिफाइड है, कितना टेक्निकली स्ट्रांग है, कितना एकेडेमिक है. और लेजिस्लेशन के लिए
जो
जब आप एक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बैठ रहे होते हैं तो लेजिस्लेशन के अंदर आपको ये चीज़ें मद्देनजर रखनी चाहिए, क्योंकि आपने कानून साजी करनी है, आपने लॉ ड्राफ्ट्स करने हैं, आपने चीज़ें बनानी है. यहाँ पे आप एक रन ऑफ द मिल एक अवामी बंदा जो तकरीरें अवामी अंदाज से करे और बातें करें, यानी अगर वो बंदा ये भी कर सकता है और बाकी चीजें भी अच्छी तरीके से कर सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इस तरह का बंदा मिल गया. लेकिन नॉर्मली नहीं मिलता इस तरह का.
आई थिंक एक थोड़ा सा अगर सिर्फ हम अपने ऑडियंस को गाइड कर सकें, हम लोग जिस ट्वीट की बात करें, फवाद चौधरी का ट्वीट 17 सितंबर का, जो मोदी की बर्थडे का ट्वीट था और दिस वॉज जस्ट आफ्टर गोट की, तो हम उस ट्वीट से बात कर रहे हैं. अगर कोई अभी तक पकड़ नहीं पाया तो
मैं पढ़ लो यार, ट्वीट बता दो ट्वीट.
नहीं यानी शर्मिंदा अगर, वो सुजान भाई शर्मिंदा हो रहे हैं कि वो उस ट्वीट को पढ़ नहीं पा रहे.
गवर्नमेंट को इतना जरूरी लग रहा था कि ट्वीट जाने देने चाहिए.
आगे हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है अपने पाकिस्तान स्टडीज की किताब में ये ट्वीट्स पढ़ेंगे.
अल्लाह ना करे.
हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्वीट किया है, टुडे रिमाइंड्स अस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स # मोदी बर्थडे. And this was just after Ghotki, by the way.
मतलब मैं कह रहा हूँ, even if it was not after Ghotki, ये कोई घटिया तरीन किस्म का ट्वीट है.
नहीं, अगर करना भी था घटिया किस्म का ट्वीट तो मिनिस्ट्री
से रेजिग्नेशन देते और फिर
मतलब कोई आदमी जो मिनिस्टर नहीं होता वो कर देता.
सही है.
ऑल्सो फिर हुआ ये क्या बात, जिस तरह हमेशा फवाद चौधरी का मजाक बनता है, लोगों ने मजाक बनाया. अब लेकिन आप अगर ऐसे देखे तो भाई ये इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को, तो
इतनी फवाद चौधरी में भी जा सकती है उसी ट्वीट पे.
सही.
जो इंडियंस ने वही किया नीचे ट्विटर थ्रेड पे. तो
अब हम क्या कर सकते हैं, हम उस पे अफसोस के अलावा क्या कर सकते हैं. आके भाई जो आपने
टॉपिक,
हम धरना दे सकते हैं ट्वीट पे.
भाई वियतनाम में मुश्किल है पाकिस्तानी इकट्ठे करना.
नहीं, पाकिस्तान जाके
हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, समझ दे, शऊर दे.
स्पीकिंग ऑफ दुआ, इमरान खान साहब आप बताएं किन किन चीजों के लिए माफी मांगनी चाहिए इमरान खान को.
गुनाहों की.
तो इमरान खान जो उमरा करने गए हैं सऊदी अरब, तो उसके लिए उनको अब वो पता नहीं उमरा तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो वहां के जो हुक्मरान है उनसे भी मुलाकात मेरे ख्याल से.
हाँ, तो आपके ख्याल में किन किन चीजों के लिए माफी मांगनी चाहिए इमरान खान को. अभी टॉप थ्री अगर आप कुछ छोटी सी दुआ लिस्ट दे दें इमरान खान को.
एक तो यूटर्न की प्लीज.
नहीं, कुछ स्पेसिफिक होनी चाहिए.
यूटर्न इतना जेनेरिक, यूटर्न हर जगह ही हो रहा है.
हम बैठ के जज नहीं कर सकते ना किसी को किसी के गुनाह पे.
ये बात भी
हम एडवाइस कर सकते हैं लेकिन
नहीं मतलब हमें कोई प्रूवन गुनाह पता है उसके
ताहवे को पता है शायद
यानी मैं उसके पर्सनल गुनाह की बात नहीं कर रहा शायद आके भाई उनके पब्लिक जो उनके जो ब्लंडर्स हैं उसकी बात कर की जा रही होगी
तो क्या ख्याल है
यानी मेरे ख्याल से यानी मैं सबको पता है सबको पता है कि किन पे किया जा सकता है मैं कहूंगा आप बताएं ना कि किस पे उनको तोबा करनी चाहिए एवरीबॉडी नोज माय स्टैंस यानी अब मैं कहूंगा कि व्हाट इज योर स्टैंस कि उनको
किसी पाकिस्तान के लिए जो है माफी मांगनी चाहिए
पूरे पाकिस्तान के लिए माफ कर सकते
ठीक है खासतौर पर सिंध के लिए
बिल्कुल
क्योंकि
कसूर के लिए भी मांगनी चाहिए
कसूर के लिए यानी दुआ से ज्यादा थोड़ी चीजें करनी चाहिए यानी आई थिंक पॉइंट ज्यादा उससे
पूरे पाकिस्तान के ही दुआ से ज्यादा ही करना चाहिए
कसूर पे अगर बात आती
तो कश्मीर के लिए भी ट्वीट से ज्यादा कुछ करना
है कश्मीर के लिए दुआ करनी चाहिए
कसूर की सिचुएशन समझ जाता हूं कितना रेडियस है उसका रेडियस कितना है कसूर का
ये
लाहौर के नजदीक है छोटा सा शहर
एक बिल्कुल छोटे इलाके जितना होगा ना
तो क्या रेडियस क्या तुम क्या
नहीं इतने से इलाके इसमें इतने केसेस हो रहे हैं और कोई नहीं पकड़ा जा रहा या तो हर आदमी हर मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वाले घर पे ये काम कर रहा है तो जो उंगलियां उठेंगी तो सब पे उठेंगी
कसूर इज बेसिकली 4000 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा भी नहीं हुआ
बहुत छोटी जगह है ये कंपैरेटिवली और इतनी ही जगह पे लोग नहीं पकड़े जा रहे और रोज के भागे हो रहे हैं
4000 स्क्वायर किलोमीटर इज क्वाइट अ बिग एरिया है
हम तुम्हारे घर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम जनरल के बारे में बात कर रहे
हैं बट फिर भी मतलब इतना मुश्किल नहीं है कि आप उसमें कोई चीज हो रही है और आप कंट्रोल ही ना कर सको वो तो खैर रिगार्डलेस अगर भाई मैं कहता सबसे बड़ा एरिया भी हो तो अगर ये चीजें कसूर नहीं कहीं और हो रही हैं कोई इससे बड़ा
ये चीज अगर कराची में हो रही होती तो अंडरस्टैंडेबल होता है कितनी ज्यादा आबादी कितने ज्यादा लोग हैं कितने रिसोर्सेज लगे हैं उस चीज पे हाँ तो एरिया कितना था कसूर का
358409 आप एरिया की बात करें पॉपुलेशन की बात
करें एरिया
एरिया इज 3995 किलोमीटर स्क्वायर
और कराची का एरिया कितना है
कराची का एरिया
बहुत बड़ा कराची है
कराची तो आई थिंक रिलेटिवली आबादी भी इतनी ज्यादा है वैसे अच्छा है बड़ा ही हो
सुना है कि 300,000 लोग रहते हैं 3.5 लाख लोग कसूर में
कराची तकरीबन है 3780 इतना फर्क नहीं हुआ मतलब रिलेटिवली बहुत क्लोज हुआ
नहीं कैसे पॉसिबल कसूर एक एरिया है छोटा सा लाहौर के करीब लाहौर इटसेल्फ कराची से छोटा है
मैं विकिपीडिया के थ्रू बता रहा हूँ विकिपीडिया पे जो है दैट इज 3780
शहर का नाम नहीं है कसूर एक तहसील या डिस्ट्रिक्ट का नाम है पंजाब के अंदर
जो शहर है मेरे ख्याल से 50 किलोमीटर के रेडियस पे है
शहर जो वहां पे कसूर का जो शहर है जो बस्ती है वो मेरे ख्याल से वो जाहिर सी बात है वो छोटे एरिया पे है
और उसकी आबादी भी बहुत कम है
अब वो जो पूरा एरिया पंजाब का जो कसूर है उसकी 3.5 लाख है अब वो जिस जगह पे हो रहा है जिस शहर में हो रहा है वो उसका हमें चेक करना चाहिए कि कितना है
मेरा सवाल ये है कि इतने कम एरिया और इतने कम पॉपुलेशन में भी लोग नहीं पकड़े जा रहे या तो हर आदमी कसूरवार है कि एक को पकड़ेंगे सब पकड़े जाएंगे
आई थिंक कोई एक
ऑर्गेनाइज हो रहा है ना मसला ये ऑर्गेनाइज हो रहा है इसके पीछे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं एमएनएस इन्वॉल्वड है पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्वड
हैं कसूर से बड़े लोग हैं यानी बुल्ले शाह जो थे वो कसूर से थे Okay. और नूर जहां सिंगर जो एक्ट्रेस जो मलका
एक्ट्रेस
तरन्नुम
तो यानी वो मलका तरन्नुम अली भट्ट भी जो हैं वो भी कसूर से ही हैं
तो ये भी कसूर से थे उफ यार ये काफी
नहीं तो पहले समझ में आता पहले नून लीग की हुकूमत थी
नजम सेठी भी कसूर से
आई थिंक एक एक्ट्रेस है आई थिंक नादिया जमील जिन्होंने ट्वीट किया था जिनका ट्वीट काफी वायरल भी हुआ था कि आई वर्क्ड विद कसूर एंड ऑल ओवर पंजाब विद चिल्ड्रन हु हैव बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड फॉर ओवर 20 इयर्स बेसिकली आई हैव बरीड बेबीज लेस देन 6 months एंड ओल्ड सोडोमाइज्ड टू डेथ्स आई हैव सीन ब्रॉथल्स वेयर लिटिल बॉयज ड्रग देमसेल्व्स टू हैव ब्रूटल सेक्स विद ओल्डर मेन बस प्लीज आई बेग टू बी एट इमरान खान पीटीआई तो आई थिंक अब हर जगह से इसको अटेंशन मिल रही है और आई थिंक जब ये जैनब का केस हुआ था आज से कोई थोड़ा टाइम पहले तब भी लोगों ने आके बोला था कि भाई कहाँ है आई एम नॉट श्योर कि उसके केस में कोई एक्चुअल प्रोसीडिंग हुई मैंने सुना था कि वो पकड़ा गया था
बट उसके सजाए मौत भी होगी
बट उसके बाद सजाए मौत हुई उसको एक्चुअल हुई तो आई थिंक अगर हम लोग यही मतलब अगर स्टेट लेवल पे अगर यही काम थोड़ा ज्यादा हो मतलब
कैपिटल पनिशमेंट जो है
कैपिटल पनिशमेंट और ओपन हो मतलब
पब्लिकली
कैपिटल पनिशमेंट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पे जिस एपिडेमिक के तौर पे ये फैला हुआ है ये जो चाइल्ड अब्यूज है ना ये कोई एक वन ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट्स नहीं है जो कसूर के अंदर हुआ, नहीं, एक बीमारी की तौर पे ये एक वहाँ पे एक प्रैक्टिस हो रहा है। और वहाँ पे उससे पहले जो ये तो जैनब के वाकई से पहले एक और रिपोर्ट आई थी कि पता नहीं कितने एक ये रिंग्स चल रहे थे, चाइल्ड अब्यूज रिंग्स जो होते हैं वो चल रहे थे, फिर उसको किसी तरीके से दबाया गया, वहाँ के इन्फ्लुएंशियल लोगों ने उसको पर ज़्यादा कवरेज नहीं होने दी, उसको दबाया गया। यानी ये एक अपेरेंटली कॉमन थीम है जो वहाँ से उठकर उस तरह की खबरों की जो आती है।
मसला ये है कि जो जो लोगों को सजा मिल रही है वो तो सिर्फ प्लेयर्स हैं, वो मतलब वो पूरा चीज कंट्रोल नहीं कर रहे।
यानी जो जो बंदा जैनब की सजा में भी जो जिसका वो जो इंडाइक्ट हुआ था, जिसको सजा मिली थी जैनब केस के अंदर, वो कोई यानी जो भी चीज जो खबरें सामने आई थी वाज नॉट अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन अपने इलाके के अंदर या मोहल्ले के अंदर, वो एक आम बाजाहिर एक आम फर्द था। उसकी वालदा को भी नहीं पता था कि यानी वो बंदा किस तरह के काम
तो पकड़ा गया।
हाँ ये भी एक आम बंदा है तो पकड़ा गया और सजा भी हुई, अगर कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा होता तो शायद ना पकड़ा जाता।
हम ये चीज भी जरा इमेजिन करने की कोशिश करें कि मतलब पाकिस्तान में स्पेसिफिक अब कसूर में भी कितने ऐसे केसेस होंगे जो कभी रिपोर्ट होते ही नहीं होंगे। भाई ये तो एक वैसे भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेरेंट्स के लिए, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं कि उनको एक एक्शन लेते हैं, क्योंकि डाउन द लाइन उन पर कॉन्सिक्वेंसेस आते ही हैं। मतलब उनको फिर थ्रेटनिंग थ्रेट्स आते हैं उनका। मैंने सुना था इनफैक्ट जो जैनब का केस था उसमें किसी उनके रिलेटिव का जाके बिजनेस भी उन्होंने ना आग लगा दी थी उसकी दुकान के अंदर। ऑब्वियसली एलिजिबली मतलब कोई 100% कन्फर्म सोर्सेज नहीं है, बट अगेन कोई इतना मुश्किल नहीं है चीज़ सोचना, होता होगा ये।
मेरे ख्याल से इतना बड़ा केस ये है इसमें फेडरल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए डायरेक्टली।
और किया उन्होंने, इमरान खान ने ट्वीट किया था उन्होंने कसूर के,
एक सेकंड सबसे पहले ये चीज करना चाहिए कि ट्वीट इज नॉट, हमारे मौजूदा हुकूमत के अंदर ये एक बहुत ज्यादा ट्वीट कर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेते नहीं ट्वीट से काम।
ये ट्वीट अच्छा होता है कि पकड़े गए लोग
पीटीआई के अपने सपोर्टर्स है, वो जो करंट चीफ मिनिस्टर है उन पर सवाल उठा रहे हैं कि आप ये यानी आप व्हाट इज द रीजन।
इससे पहले कि इमरान खान को कंप्लीटली बैशिंग करते हैं, आई नो योर फेवरेट सेगमेंट है तहावाई का, मैं ट्वीट पढ़ लेता हूँ उन्होंने किया क्या। यानी इफ अगर मुझे इजाजत दी जाएगी, उन्होंने कहा कि ऑन द कसूर इंसिडेंट देयर विल बी अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल those who do not perform in the interest of the common man will be taken to task. Following actions have so far been taken by the Punjab police and the provincial government. DPO Kasoor has been removed. SP investigation Kasoor surrendered, charge sheeted and being proceeded against. DSP and SHO have been suspended. A major overhaul in the Kasoor local police is on the cards. And a formal probe has been ordered under additional IG.
Very good.
So more than just a tweet, yani. I was tweet bata raha tha ki unhone kiya kya unhone.
Yani bahut ha maine ye padhi thi ye tweet aur ye acche unhone ek steps liye hain in the right direction.
Yes.
And hopefully you know what I'm going to say.
Bataye.
There is no U-turn. Yani usi direction ko follow karte jaye aur aage badhte rahe aur isko apne hatmi anjaam tak pahunchaye. This is okay. यानी मैं इफ आई गो टू फार पीपल विल नॉट लाइक टू मच क्रिटिसिज्म।
सो नहीं जो 10 लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपकी पीटीआई बैशिंग।
यस
नहीं तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर मैं इमरान खान की जगह होता, मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं कैपिटल पनिशमेंट रखता और पब्लिक जैसे सुफियान ने कहा पब्लिक रखता, 10 लोगों को लटकाता ताकि 100 लोग इबरत करते।
यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप कोई ऐसे एरिया में अगर आप कुछ कर सके ना कि बिकॉज ये केसेस मुझे ऐसा दिखता है अभी भी कि ये कोई केस क्योंकि एक और लड़की का समझ आ गया, सबको पता चल गया कि भाई एक और लड़की के साथ केस हुआ, उसको कवरेज मिल गई वापस, इसका मतलब ये नहीं कि ये रुक जाएगा। जैनब का भी खत्म हुआ था उसके बाद फिर शुरू हो गया ना, तो ये भी शायद हो सकता है एक टेम्पररी पॉज है और फिर शुरू हो जाए। जब तक कि आप लोगों को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे ना सबके सामने, वो भी मतलब इन फ्रंट ऑफ देयर ओन पीपल, तब तक ये चीज नहीं रुक सकती।
हाँ मैं वही कहूँगा ये एक एस्पेक्ट है इस चीज़ को कंट्रोल करने का, लेकिन जब तक आपकी वहाँ पे एक मैकेनिज्म नहीं होगा लॉ एनफोर्समेंट का, अब वहाँ पे यानी पुलिस के पास प्रॉपर रिसोर्सेज हो, इन्वेस्टिगेशन हो, मॉनिटरिंग हो लॉ एनफोर्समेंट की, उस हवाले से एक एक्टिव रोल हो, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी अंडर द रेडार अंडर द ग्राउंड हो रही होती हैं जो आपको नहीं पता चलती। ये चीज़ें पकड़ना इतना आसान काम नहीं है, ये तो अंडरग्राउंड हो रही होती हैं चीज़ें। कसूर के अंदर शायद वो इतने धड़ल्ले से कर रहे हैं कि अब वो ओपन हो गई हैं, उनको बिल्कुल भी खतरा नहीं है। कसूर से बाहर जाए पूरे पाकिस्तान भर से आपको ये अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट्स मिलेंगी। अगर आप
जैसे मैं ऐड करने जाऊंगा, अगर किसी को याद हो वो दो भाई जो थे सियालकोट पे,
यस,
जिनको
पब्लिकली लिंच किया था,
जो ने मारा था और किसी ने नहीं रोका था,
बट आई थिंक
लोग पकड़े गए थे उनकी सजाए मौत को कन्वर्ट कर दिए कुछ सालों में और 10 महीने में रिहा होने वाले हैं।
बट आई थिंक अब इन दोनों केसेस को इक्वेट नहीं कर सकते. ऑल दो हाँ आई एग्री कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए दोनों केसेस में, बट वहां पे जो लोग मारे थे वो डिफरेंट केसेस में वो जस्टिफाई कर रहे थे कि भाई ये शायद चोर थे.
नहीं चोर भी थे तो किसी का
हक वही मैं कह रहा हूँ
कन्विक्ट तो हो गए थे ना वो फिर रिगार्डलेस.
यहाँ पे एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो स्टेट की, जो अब हमारी मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ नेशन स्टेट है वो क्योंकि इस चीज को एड्रेस नहीं करती, एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने लोगों की मॉरल लेवल बढ़ाए. हमारी यहाँ स्टेट एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर तो नहीं समझता ना, मैं दूसरे स्टेट्स का मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा कि वो अब नहीं समझता कि हमें अपने लोगों की मॉरल स्टैंडिंग को बढ़ाना है, हमने लोगों के अंदर उनके किरदार को बेहतर करना है, उनकी तरबियत करनी है. यानी इस तरह फोकस नहीं होता. अगर फोकस होता ना तो बहुत ही टोकन अंदाज में चीज़ें होती हैं. आपको नहीं लगता कि कोई कोई एक कॉन्सेंट्रेटेड एक एफर्ट है या एक एक फोकस्ड काम हो रहा है?
किस तरह काम होना चाहिए मिसाल के तौर पे, किस तरह काम होना चाहिए?
आप इस पे तो आपको पूरी मैं यहाँ पे बैठे क्या कहूँगा, ये तो आपको खुद ही समझना चाहिए कि यानी अब एथिकल मॉरल जो फिलोसफर
की बात आप कर रहे हैं आपको खुद ही समझना चाहिए.
यानी आप मॉरल
आपको खुद ही समझाना चाहिए.
एथिकल एक मॉरल फिलोसफी एक अपनी एक फील्ड रखता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अपनी एक फील्ड है, इसके कोचेज होते हैं, इसकी
स्टेट जो है बेसिकली फिलोसफी सेमिनार्स
स्टेट फिलोसफी सेमिनार्स नहीं करें, मैं बता रहा हूँ कि किन लोगों को इसमें ऑन बोर्ड लेकर जाएगा, कंसल्ट कर एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है. आप अपने आपके स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जिस इस्लाम के अंदर बुनियाद ही इसी चीज की ना कि कुरान बल्कि हजूर हसन की हदीस है कि मुझे आई हैव कम टू कंप्लीट गुड कैरेक्टर. यानी मुझे मेरा आने का एक मकसद जो है ना वो इखलाक को मुकम्मल करना, यानी अच्छे इखलाक को.
तो इमरान खान ने भी ये कहा ना वो एक मदीना की रियासत बनाना चाह रहा है.
तो मदीना की रियासत के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि आप लोगों की इखलाकी तरबियत करें. अब इखलाकी तरबियत के अंदर आप ये नहीं होता कि आपने एक जो हमारा पिछला कॉन्सेप्ट चला आ रहा है कि हमने स्कूल के अंदर भेज दिए, स्कूल आपकी इखलाकी तरबियत नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. अगर शायद किसी जमाने में करते थे तो आजकल नहीं कर रहे स्कूल, ना ही आपकी यूनिवर्सिटीज कर रही हैं. अगर कोई मॉरल एलिमेंट भी किसी हवाले से लेकर आया जाता है तो एक रेजिस्टेंस आती है हमारे एक तबके की तरफ से बहुत ज़्यादा. तो ना ही मदरसों का सिर्फ मदरसों का काम है कि वो आपकी मॉरल अपब्रिंगिंग या मॉरल वो डेवलपमेंट करें. ये एक आपको इसके ऊपर एक प्लान तैयार करना, एक प्रोग्राम तैयार करना चाहिए.
मेरे ख्याल से इस पे
वालदैन की भी तरबियत होनी चाहिए बकायदा.
यानी सोसाइटी आपको शेम करना चाहिए, उन लोगों को पब्लिकली शेमिंग होनी चाहिए सब चीजों
की, एक
सोच रखने की शेमिंग होनी चाहिए.
हाँ, एक सोसाइटी जब डेवलप होती है, जब उसके अंदर नॉर्म्स बनती हैं, सोसाइटी के अंदर एक अच्छी नॉर्म्स बनती है, जब भी कोई उस अच्छी नॉर्म से डिविएट करता है तो शेमिंग होती है उस सोसाइटी के अंदर. हमारे अनफॉर्चुनेटली नॉर्म्स बहुत ही अजीब किस्म के बने हुए और उस पर शेमिंग होती है. हमारे नॉर्म्स बने हुए कि अगर किसी ने वो धूम धड़ल्ले से शादी ना करी या उस तरह से चीजें ना करी तो उस पर शेमिंग होगी, लेकिन अगर हमारे यहाँ
जहेज लें तो
जहेज नहीं अच्छे तरीके से दिया तो उस पर शेमिंग करेंगे. तो ये अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है हल्के हल्के, लेकिन हमें अच्छी नॉर्म्स डेवलप करनी चाहिए सोसाइटी के अंदर, तभी वो सोसाइटी कंट्रोल.
और इन्फ्लुएंशियल लोग जितने लीडर्स हैं, एक्टर्स हैं, ये भी इस पे एक पॉडकास्टर, ये भी इस पे रोल अदा कर सकते हैं.
हाँ,
तालीम में लोगों
मीडिया का जाहिर सी बात है अपना रोल है जो मीडिया आज तक अभी तक रिकग्नाइज नहीं कर रहा.
चलो, एक चीज जो हमारी गवर्नमेंट स्पेसिफिकली केपीके की गवर्नमेंट कर रही थी, करने की कोशिश की थी, उन्होंने जो है स्कूल गर्ल्स के लिए लाजमी कर दिया था अक्रॉस द प्रोविंस टू बेसिकली कवर अप. और फिर चंद दिनों बाद, घंटों बाद, हफ्तों बाद, दिनों
घंटों बाद,
घंटों बाद तो नहीं,
अपेरेंटली घंटों
घंटों बाद, बड़ी एफिशिएंट है यार माशाल्लाह गवर्नमेंट के भी की ऐसी
एफिशिएंट गवर्नमेंट,
जबरदस्त यू टर्न लिया उन्होंने. तो उन्होंने कहा नहीं, अब जरूरत नहीं है कवर अप करने की,
मसला सॉल्व हो गया.
तो इस पे बात करते हैं, क्या ख्याल है, इखलाकी तरबियत करी थी हमारी गवर्नमेंट?
आई थिंक आकिफ अगर आप पहले बता सके वो क्यों, किस लाइट में उन्होंने ये किया था, कवर अप करने का रीजन क्या रखा था उन्होंने?
बेसिकली कह रहे थे कि टू प्रिवेंट हरासमेंट बेसिकली.
और हटाया क्यों था?
वो कह रहे थे वी हैव सेंसिटिव एरियाज, वी हैव सेंसिटिव एरियाज इन द प्रोविंस व्हिच रिक्वायर सेफ्टी मेजर्स फॉर द चिल्ड्रन, एंड ही एडेड दैट आल्सो इन लाइन विद द ट्राइबल वैल्यूज एंड द ट्रेडिशनल एंड द ट्रेडिशंस ऑफ इस्लाम, एंड दिस स्टेप हैज बीन टेकन पर्टिकुलरली टू रिमूव द डाउट्स रेज्ड बाय पेरेंट्स अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन. वी हैव टू टेक डिसीजंस व्हिच आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर कल्चर, आवर पीपल and the province. If and if such a measure can convince the parents to send their girls to school, why not?
aur hataya kyun ye decision wapas kyun liya?
Because why not?
When you're KPK, why not?
When U-turn makes you a great leader, then why not?
why not? Yes.
इसमें अच्छी बात है, यानी मेरे ख्याल से इसको अगेन दिस कुड बी अप्रोच फ्रॉम वेरियस एंगल्स, इसको मुख्तलिफ जगह से देखा गया। एक तो मोटिवेशनल फैक्टर जो इसमें जो आया था वो यही था जो नोटिफिकेशन के अंदर आया कि हम इसको हरासमेंट रोकने के लिए कर रहे हैं और ये चिप कर रहे हैं, वो सब अच्छी जगह है। अनफॉर्चुनेटली हमें देखना चाहिए, और हमारी जो इसको एक हमारे यहाँ जो मजहबी तबके थे ने इसको सपोर्ट भी किया और बहुत सराहा भी इस मूव को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लिबरल तबका है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जगह पे बैठा हुआ है, फॉर्चुनेट यानी वो जो अनफॉर्चुनेटली फॉर मजहबी तबका कि लिबरल तबका बहुत इन्फ्लुएंशियल जगहों पे बैठा हुआ है और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से उसने अपने थोड़ा इसको रेज कर इसको हटवा दिया, यानी प्रेशर बिल्ड कर।
बट
यहाँ पे जो क्लैश है ना वो वर्ल्ड व्यू से क्लैश है, वर्ल्ड व्यू से क्लैश है। यानी आपकी बात सही है, वो एक शाहजेब खानजादा का गालिबन सुफियान भाई ने एक शेयर किया था उस पे, वो क्या
15 मिनट क्लिप
जो, हाँ जो 15 मिनट क्लिप है विद मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK
मेरे ख्याल से अगर पर्दा लगाया हैरेसमेंट से बचाने के लिए तो आधा काम किया, जो लोग हैरेस कर रहे हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए।
बिल्कुल,
जियाउल्लाह बख्श नाम है उनका, तो उनको शाहजहाब खानदान ने इनवाइट किया था अपने प्रोग्राम में।
अगर पूरी तरह इसको अगर हैंडल किया जाता तो अच्छी तरह जाता। अब दूसरी बात के फौरन हटा दिया, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मतलब डोंगे वोट से आई है तो गवर्नमेंट की मर्जी है वो कुछ भी करे, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं तोड़ रही तो उसमें किसी को मसला नहीं होना चाहिए।
नहीं बट आई थिंक रीजनिंग मुझे कुछ सेंसिबल ही नहीं लगी।
उन्होंने लिस्ट ऑफ रीजनिंग दी।
आई थिंक एक मिनट, जो शाहजहाब खानजादा के प्रोग्राम में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जो ऑलमोस्ट 1178 केसेस रिपोर्ट हुए हैं लड़कियों के लिए और 1150 केसेस तकरीबन रिपोर्ट हुए हैं बच्चों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। तो वो कह रहे थे कि अगर आपको लगता है कि आपका सोल्यूशन इज जस्ट बेसिकली कवर अप, तो आप लड़कों की कवर अप नहीं करवाते और उनका क्या कवर अप होगा? एंड वॉट इज योर रैशनल? अब मैं एज अ नोबडी अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि भाई व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड द गवर्नमेंट मेकिंग सच अ डिसीजन कि भाई टू स्टॉप एनी सेक्सुअल हरासमेंट हम लोग एक कवर अप करने का प्रोसीजर कर देते हैं विच विल हेल्प। तो आई मीन दिस इज वेरी इलॉजिकल टू मी, मुझे समझ नहीं आता कि
उसका। हाँ, सवाल अपनी जगह पे एक तरीके से सेंस बनती है, लेकिन बेहतर सवाल ये होता है कि आप सिर्फ इस पे ना रुके, ये भी करें, लेकिन दिस विल नॉट सॉल्व दिस विल नॉट बी द थिंग दैट विल कम्प्लीटली सॉल्व दिस सिचुएशन। और वो सवाल कि हाँ बच्चों को क्या, लड़कों को क्या कवर अप करवाएंगे,
आई थिंक वो कम्प्लीट करने के लिए बस वो बात उन्होंने शाहजहाब ने फिर बोला ना कि आप अवेयरनेस क्यों नहीं फैलाना चाहते थे? तो बोलते हैं हम इसमें फिर आपका तावन चाहते हैं, हमने टीचर्स को बोला है और आपके मीडिया को बोला है। अवेयरनेस के भाई
डोंट गेट हैरेस्ड क्या मतलब?
मतलब अवेयरनेस
डोंट हैरेस, यानी ये अवेयरनेस
तो उससे और उससे जो हैरेसर जो है वो नहीं करेंगे।
मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट हैरेसमेंट लॉज मेरे ख्याल से सऊदी अरब में है, उसके अलावा कहीं और पे है, क्योंकि वहां पर अगर वो लोग उनसे पर्दा करवाते हैं तो ये भी मेक श्योर करते हैं कि जो आदमी छेड़ेगा उसको एक हैवी फाइन होगा या तो जेल जाएगा, वो कुछ ऐसा करेंगे कि दूसरी बार वो 100 दफा सोचेगा करने से पहले। तो अगर हम जो है उनका मॉडल ले सकें और वो फॉलो कर सकें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा?
ऐसी बात की है कि जो तबका वो ऐसा छलांग मारेगा ना कि सऊदी अरब का मॉडल
मैं देखता हूँ। मैं काफी अरसे से गौर कर रहा था कि सऊदी औरतें पूरी कवर होती हैं,
तो क्यों देखी सऊदी औरतें
टीवी पे नजर आता है और हम सुनते हैं कि पूरे नकाब में होती हैं वो,
ठीक है।
तो इस पे क्रिटिसिज्म मिलता है सऊदी अरब को कि मतलब किस तरह अपनी औरतों को रखते हैं। फिर मैंने एक दफा एक सऊदी मर्द को देखा टीवी पे, वो आदमी खुद सर से लेके पांव तक कवर अप था, उसका सर ढका हुआ था, उसका जो
टीवी में जो भी आएगा वो सर से लेकर पांव तक की कोई
नहीं, वो एक आदमी पे वो नहीं होता कि वो कवर होकर आए, वो उनका ट्रेडिशन ऐसा है कि वो मर्द इतने कवर अप होते हैं जब भी वो अपनी औरतों को कहते हैं कवर अप। अब अगर हम सिर्फ औरतों को कवर अप करते हैं और मर्द बगैर उसके घूम रहे हैं किसी भी हुलिये में, तो औरतें पूछेंगी उस तबके की भाई मर्द क्या कर रहा है।
मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी मर्दों के अंदर कोई ना कवर अप करने का कोई इश्यू है, यानी ये वाला
वो है तो फिर वो यानी बाय चॉइस नहीं है, बाय सर्कमस्टेंस
वो वही तबका है,
वो गरीब इतने या बेचारे
नहीं नहीं वो वही तबका है जो कवर अप नहीं कर रहा, जो कह रहा है कि औरतों को भी नहीं कवर अप करना चाहिए।
वो रेजिस्टेंस उसी तबके से आई है, लेकिन हाँ जब आपकी एक अप्रोच ये होनी चाहिए, मदीना की जो इस्लामी रियासत की बात होती है तो यानी मौलाना मौदूदी जो एक इस पिछले सदी के वो कह लें इस्लामिक फिलोसोफर गुजरे, तो उनका बड़ा अच्छा अप्रोच है। बल्कि यहाँ पे यूसुफ अल करदावी भी एक स्कॉलर है, उनका भी इस पे था कि आपने लोगों को जहन बनाने पहले कि वो एक्सेप्ट कर सकें, यहाँ पे वर्ल्ड व्यूज का डिफरेंस है, यहाँ पे लोगों की पर्पस ऑफ लाइफ क्या है उसके हवाले से लोगों के कॉन्सेप्ट डिफरेंट है. एक तबका का कोई और कॉन्सेप्ट है और जो तबका इसको अपोज कर रहा है वो जिंदगी को बिल्कुल ही दूसरे तरीके से अप्रोच करता है. वो ये नहीं वो उसका क्या हमारी जिंदगी के बारे में ही नजरिया कुछ और है. यहाँ पे तो आपको पहले उस चीज को एड्रेस करना पड़ेगा लोगों की कि उनके जिंदगी के बारे में नजरिया क्या है. फिर आप जाकर लोगों की जब जहन करेंगे, लोगों की जहन साजी करेंगे, लोग तैयार होंगे, लोग एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उनको ये बहस समझ आएगी कि अगर जो जो अगर ये बहस समझ आएगी कि टू कीप इन लाइन विद योर इस्लामिक ट्रेडिशंस, उनको अभी इस्लामिक ट्रेडिशन यानी क्या, यानी व्हाई डू वी हैव टू कीप इन लाइन विद इस्लामिक ट्रेडिशन, उनकी यानी यही सवाल है
ना. फिर
अगर हम मदीना की भी बात करें, मदीना में भी रातों रात पर्दा नहीं आया था शुरू में. पहले एक तरबियत हुई थी सबकी, सब ऑन बोर्ड थे, सोच बदली गई थी, फिर जाके पर्दे का हुक्म,
यानी सोच बदली गई थी. यानी आपने एक पहले लोगों के अंदर वो सोच डेवलप करनी है और फिर अगर आपने सक्सेसफुली इस चीज को इंप्लीमेंट करना है, अगर आप चाहते हैं कि इसके लॉन्ग टर्म रहे, यही ना रहा है कि आपने सुबह को ये ऑर्डर दिया और फिर शाम को आप इसको वापस ले रहे हैं. यानी सवाल ये उठता है कि क्या पहले इस माशरे के अंदर, मुसलमान माशरे के अंदर, साउथ एशिया के अंदर पर्दा हुआ करता था, वो किस तरह गया? क्या किसी कोई ऊपर से कानून आया कि पर्दा हटाया जाए? नहीं. वहां पे एक जो भी जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने एक एनवायरनमेंट इस तरह का क्रिएट किया, आपका माशरा इस तरह का इन्फ्लुएंस किया कि हल्के हल्के उन्होंने उसने लोगों की जहन साजी करी अपने तालीमी निज़ाम के जरिए, अपनी मीडिया के जरिए, मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए कि लोगों के अंदर ये वाली चीज खत्म होती गई. तो इसको काउंटर करने के लिए भी अगर आपने दूर रस इसको नतायज रखने, अगर आपने ये पर्दे का लेकर आना, सिर्फ पर्दे का नहीं, आपने बाकी भी अच्छी इकदार रख अपने अंदर डेवलप करनी है, तो यही है कि आपने लोगों के अंदर इसको हल्के हल्के डेवलप करना होगा, उनकी जहन साजी करनी होगी और उनकी तरबियत करनी होगी. यानी अगर आपने इसको सक्सेसफुली,
किसी ने नोटिस किया यहाँ पे वियतनाम का भी जो नेशनल ड्रेस है वो बहुत सिमिलर है पाकिस्तानी शलवार कमीज से?
अच्छा,
क्योंकि हम लोग यहाँ ट्रेडिशनल वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देते हैं.
सही.
कवर अप से एक और अभी रिसेंटली आयरोनिकली वेरी रिसेंटली एक और केस आया था, पता नहीं किसी ने देखा हो कि नहीं, वो जो डीजी खान में हुआ था, 55 ईयर ओल्ड आदमी बाइक पे चलते हुए उसने किसी को इनप्रॉपर्ली टच किया और जिसको टच किया था, जिस लड़की को,
वो
पूरी कवर्ड थी. तो अगेन
दिस इज नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन. आई थिंक एनीवन वुड एग्री विद दिस, कोई भी नहीं कहेगा कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन है. हमें अनफॉर्चुनेटली यानी हमें एक डिस्क्लेमर लगाना पड़ता है, हमारे अंदर इतनी सेंस होनी चाहिए कि जब कोई ये बात कर रहे हैं ना कि पर्दा होना चाहिए तो वो ये भी एज्यूम किया जाए या अंडरस्टूड बात है कि जो बंदा कर रहा है ना उसकी भी तरबियत होनी चाहिए कि वो इस तरह की हरकत, हाँ उसकी सजा भी होनी चाहिए, उसकी भी सजा होनी चाहिए कि वो इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है. ये आई थिंक दिस इज वेरी अनफेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट कि वो एज्यूम करते हैं कि अगर कोई हरासर को आप फॉरगो करना चाहते
हैं, वो भी ये कहेंगे ना, वो कहेंगे हमें भी तरबियत करनी चाहिए अपने बॉयज की और गर्ल्स की,
बिल्कुल,
और एक सेक्युलर लाइफस्टाइल होना चाहिए, वुमेन शुड बी फ्री टू वेयर व्हाटएवर दे वांट.
सही है.
एंड एज वेल एज द मेन, एंड एवरीथिंग विल बी ग्रेट.
अगर इफ यू वांट टू वेयर व्हाटएवर यू वांट देन पीपल विल स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर दे वांट.
फिर ये वर्ल्ड व्यू का क्लैशेस है ना. फिर आप इस पे तो पूरी आर्ग्यूमेंट होगी कि व्हाई शुड वी गो फॉर अ सेक्युलर वर्ल्ड व्यू.
मेरा मसला सारा व्हाटएवर यू वांट्स है, मतलब हर चीज का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए. अगर एक जगह छूट दे रहे हैं कि जिसको जो पहनना है वो पहने, उसकी मर्जी, तो फिर आगे जाके वो चीज और करप्ट हो जाएगी और फिर कहेगा मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, मेरी मर्जी.
वही है यहाँ पे आपको पूरी आर्ग्यूमेंट है जो दिस इज अ क्लैश ऑफ वर्ल्ड व्यूज, जो मैं पिछले पॉडकास्ट में भी कह रहा हूँ आपको. पर इसके ऊपर एक डिबेट, एक अच्छी आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए मुख्तलिफ वर्ल्ड व्यूज रखने वालों की और एक दूसरे को कायल करने की कोशिश करनी चाहिए. दैट इज द ओनली वे आउट के जो आवाम, जितनी ज्यादा आवाम जिस वर्ल्ड व्यू पे है उसके मुताबिक फिर इस मुल्क के अंदर कानून साजी. और एज फार एज आई नो, या लास्ट टाइम आई चेक्ड, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी मुसलमानों की है. मुसलमान का आई थिंक जो मतलब ही जो लफ्जी तर्जुमा है वो है कि वन जो सबमिट करता है,
खामोश मुसलमान बहुत है पाकिस्तान में.
यानी अगर आप कह रहे हैं मेरी मर्जी है तो दैट इज नॉट सबमिशन, यानी दैट गोज अगेंस्ट द बेसिक linguistic meaning of the word Muslim is one
Islam, but Islam means peace.
Islam denounce कर ले और जो करने करते रहे. मेरा एक argument यहाँ पर आता, अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं आपको कुछ rules and regulations follow करने होंगे. अगर आप समझते हैं कि आप इनसे above हैं, आप अपने आप को कहते हैं नहीं मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं atheist हूँ या मैं वो हूँ, लेकिन declare करते हैं कि आप मुसलमान.
एक argument आती है कि there is no compulsion in religion, यानी that is the دیٹ از اے ویری گڈ یعنی فار یو از یور ریلیجن فار می از مائی ریلیجن یعنی یہ ایک دوسری کانٹیکسٹ کی آیت کو یہاں پہ اپلائی کیا
نہیں میں اسی پہ کہہ رہا ہوں کہ کمپلشن کسی کو کنورٹ کرنے میں نہیں لیکن ایک دفعہ مسلمان ہو گئے آپ کو رولس اینڈ ریگولیشن فالو کرنے
ہیں اونلی لاجیکل یہ کہ آپ یعنی کہ آپ جب آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ایک سسٹم آف لائف تو آپ اس سسٹم آف لائف کو اڈاپٹ کریں اور اس کو فالو کریں آپ یہ نہیں کہیں کہ میں سسٹم آف لائف کو مانتا ہوں لیکن میری مرضی جو کر رہے ہیں اور کوئی مجھے زبردستی نہیں کروا سکتا اور باقیوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہر کسی کی اپنی مرضی یعنی یہ کانٹرڈکشن ہے یعنی آپ نے پھر اس سسٹم آف لائف کو ایکسیپٹ نہیں کیا پھر آپ نے کوٹ اینڈ کوٹ
سوسائٹی نہیں کیا سوسائٹی کو آپ نے ایکسیپٹ کیا تھا سوسائٹی میں سب لوگ پردہ کریں گے تو میں پردہ کروں گا سوسائٹی میں سب لوگ یہ کریں گے تو کروں گا لیکن اسلام میں اسلام میں آپ واحد آدمی ہیں اگر آپ صحیح ہیں پوری دنیا الگ جگہ جا رہی ہے آپ کو وہیں جانا ہے جہاں قرآن اور سنت
بٹ اگین اسلام بھی وہی قرآن اور سنت کی بات آ جائے یہاں پہ آئی تھنک کیونکہ ہمارے پاکستان میں بھی اچھے خاصے
نہیں نہیں قرآن اور سنت اسٹرکٹلی آپ کو قرآن اور سنت سے الگ جائیں گے تو آپ ویسے ہی کسی اور اس پہ جا رہے روٹ پہ
تو جو بھی ہم جہاں سے بھی سنیں رادر ویریفائڈ کہ قرآن اور سنت میں بھی وہی ہے کہ نہیں کیونکہ بہت سارے مس لیڈنگ حدیثوں کا بھی جس طرح ہوتا ہے بہت ساری ضعیف حدیث شیئر ہو جاتی ہیں
کئی اسٹوریز شیئر ہو جاتی ہیں جو کبھی ہوئی نہیں تھی
ہوئی نہیں ہوتی
جیسے محمد سمیع کی ہوئی تھی جو نہیں تھی جو ہمیں ابھی ریسنٹلی پتا چلا ہے محمد سمیع نے ہمیں کانٹیکٹ کیا ہے کسی فرینڈ کے تھرو کہ وہ
میں شرمندہ ہوں اور میں معافی مانگنا چاہتا ہوں محمد
کیا اس کا مطلب ہے آپ پی ٹی آئی سپورٹر ہیں آپ یوٹا
نہیں میں غلطی
لے لی ساتھ تم اتنا بڑا یار
غلطی ہوگی تو میں اس کو کہوں گا کہ غلطی میری یا میں اڑ جاؤں سدھی لوگوں کے طرح کہ نہیں غلطی نہیں تھی میری طرف سے
یہ ہوتی ہے تربیت دیکھا
بالکل
ناظرین یہ ہوتی ہے تربیت آپ نے لائیو لائیو ڈیمونسٹریشن دی ہے اپنی تربیت کی تو بہت شکریہ کرتا ہوں میں محمد سمیع کے دوست کا کہ وہ
افینڈ نہیں ہوئے
کہ دوست کے دوست کا سوری وہ افینڈ نہیں ہوئے اس بات پہ
یہ اگر ہو بھی گئے تو سوری
یار اگر ڈھونڈ سکتے ہیں تو ڈھونڈ لیں
وی ہیو یعنی یو ہیو بین یعنی
بھائی دیکھ ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وی کین سے واٹ ایور
آپ کی بےزتی آل
نہیں واٹ ایور
95 لوگ جو ہمیں لاسٹ فریڈم آف
اسپیچ بھی ہوتی ہے ایک چیز فریڈم آف اسپیچ
بھائی ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وی کین سے واٹ ایور وی وانٹ
اور یہ چیز صرف ان 95 لوگوں تک پہنچے گی جنہوں نے ہمارا پچھلا پوڈ کاسٹ سنا تھا جس میں سے 14 دفعہ صرف سفیان بھائی نے ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے خود ہی سنا اتنی
ویسے میں زیادہ ہو رہا ہوں میں ایک لبرل
فیمینسٹ 14 بار نہیں تھا کم تھا
میں ایک لبرل فیمینسٹ ہوں اس کا مطلب میں ابھی جو بھی کہنا چاہوں میں کہہ سکتا ہوں کوئی افینڈ نہیں ہونا چاہیے
ٹھیک ہے
اور میں کہنا چاہیے میری پوری اتنی فلسفی ان دونوں چیزوں کی سب فلاڈ ہے
صحیح ہے
لیکن کیونکہ میں نے کلیم کر دیا کہ میں ہوں تو آپ کسی کو آفینس نہیں لینا چاہیے اس بات پہ
صحیح ہے ٹھیک ہے
کیونکہ یہ میرا رائٹ ہے جو بھی بولنا چاہوں
بالکل آپ کا رائٹ ہے
اور میں بتانا چاہتا ہوں یہ فراڈ کانسیپٹ ہے ہمارا
ٹھیک ہے
ہم سمجھ گئے
صحیح ہے تو آج ہم نے خود ہی ایک لبرل فیمینسٹ کے منہ سے سن لیا کہ وہ اپنی فلاڈ فلسفی کو کریٹیسائز کر رہے ہیں
اس لیے کر پا رہا ہوں کہ میرے پاس رائٹ ہے کہنے کا
ٹھیک ہے بالکل
ایک اور چیز بس میں کہہ دوں ٹاپ کیا کہتے ہیں ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے ٹاپ آڈیٹر آف پاکستان یعنی آڈیٹر آپ کا جنرل ناٹ جو آپ کے جو فرمز ہوتی ہیں آڈیٹر جنرل آف پاکستان اے جی پی ہیز پوائنٹڈ آؤٹ ارریگولیرٹیز آف مور دین 15.6 ٹریلین روپیز آف پبلک منی ڈیورنگ دا آڈیٹ ایئر 2018-19 بائی دا فیڈرل منسٹری اینڈ ڈیویژنس
Wait, this is specific to any industry or generic baat ho rahi hai?
Usne kaha, for example, government raised 2 billion international bonds at 8.5% and 7.5% with the approval of the Prime Minister instead of the Federal Cabinet as required by the rules. While the audit objected to the higher interest rate, the entire amount was described as irregular and authorized without raising questions if these were actually justified. چلتا ہے یار تھوڑا بہت 15 ٹریلین روپیز آپس میں بوائز میں چلتا ہے یعنی کچھ زیادہ ہی یعنی آئی تھنک ڈان اس کو شور مچا رہی ہے
آئی تھنک اگر اسی کی ہم بات کریں تو ابھی جو پی ایس ایل بھی تھا جس کا اتنا بڑا ہمارا چرچا ہوا ٹھیک ہے اس سے اچھی خاصی ہمارے پاس واپس کرکٹ بھی آئی لوگوں نے انجوائے بھی کیا تھوڑا بہت اس میں بھی اچھی خاصی میں ایگزیکٹ فگر آپ کو بتاؤں تو اس میں بھی اریگولیرٹیز آئی تھیں ان کے آڈٹ ہوا تھا تو کتنا تھا ایگزیکٹلی اچھا اکارڈنگ ٹو دا آڈٹ رپورٹ پی سی بی آلسو فیس لاس ڈیو ٹو ارریگولر اوارڈ آف کمپنسیشن ٹو دا پی ایس ایل فرانچائز آف 54.4 million وائل انجسٹیفائڈ آکشن آف فرانچائز کاسٹ لاس آف 11 million US dollars द रिपोर्ट ऑल्सो रिवील दैट पीसीबी डिड नॉट रिकवर अमाउंट ड्यू टू फ्रेंचाइजेस वर्थ 32 million rupees. तो
पीनट्स
हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी में इतना सा क्या होता है पता भी नहीं चलेगा.
यानी अब जितना डॉलर गिर गया तो 32 million rupees.
उस पॉडकास्ट को मैं एक लास्ट चीज पे बात करूंगा. इट्स एन अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी सुनती है ISI. वो ये है कि ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल है. कलत जो है जो एक शहर है शहर नहीं डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान में उनके सिटीजन्स जो हैं डिमांड कर रहे हैं कि उनका इंटरनेट जो है प्लीज वापस लाया जाए.
हम उन्होंने हमारा पॉडकास्ट सुनना है.
फॉर द पास्ट 5 years 5 साल ठीक है मोबाइल इंटरनेट एंड 3G सर्विसेज रिमेन सस्पेंडेड इन कलत खलीकाबाद मंगचार एरिया.
चीचावटनी के पास है ये
यार चीचावटनी बहुत प्रिविलेज
चीचावटनी यार ये आपके प्रोनाउंसिएशन को क्या हो गया यार.
लेकिन जो भी है जो भी जो कलत खलीकाबाद मंगचार एरिया ड्यू टू विच पीपल फ्रॉम ऑल फैक्शन सिटी इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड ऑफिस गोअर्स फेस इमेंस डिफिकल्टीज. On the other side, the Wi-Fi services, which have been used and alternate, are stuck with several glitches. Therefore, their access to the World Wide Web remains unavailable for the citizens.
So the human rights violation.
हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि हमने अपना पॉडकास्ट उन तक पहुंचाना है.
सही बात है.
तो
उनका नहीं, वैसे पॉडकास्ट के लिए नहीं इंटरनेट चाहिए वैसे ही इंटरनेट जो भी करना चाहे इंटरनेट.
अब तो ह्यूमन राइट्स के उसमें आ जाता है कि इंटरनेट अगर आप कट ऑफ कर लें तो आप वायलेशन कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स
की. और ये अब इंटरनेट एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ बन चुकी है.
यानी मतलब कलत जो है इसकी इतनी एक हिस्टोरिकल टाउन है कलत डिस्ट्रिक्ट में बलूचिस्तान में और लोकली जो है वहां पे
वेरी श्योर कि आप इसको प्रोनाउंस सही नहीं कर रहे.
मेरे ख्याल से उस एरिया की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी हाई है तो इंटरनेट जो
कहीं कलाप्स तो नहीं
हो रही
है जिसको ये कलत कह रहे
हैं. हर चीज गवर्नमेंट पे नहीं डाल देते ना. हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पर है वो डिस्टर्ब हो चुकी हो.
वहां पे एक हिंदू टेंपल है कलत काली टेंपल.
ये स्पेलिंग बताएं क्या है कलत की. क्या
KALAT.
हाँ ये कलत नहीं है.
हाँ ये कलात है. अगर मैं उर्दू में देख रहा हूँ तो ये कलात है. आई एम सॉरी कलात. Not that they can hate me because they don't have internet.
सही है.
तो
वो जो हुकूमत को आप अपील कर रहे थे वो बेचारे ढूंढ रहे होते हैं ये कलत कहाँ पे. वो देखे आपने इस तरह की
गलत शहर को इंटरनेट दे
गलत शहर को इंटरनेट पहुंचा देते हो.
और लास्ट बट नॉट लीस्ट कश्मीर. अभी भी जो कश्मीर में हो रहा है वो भी हो रहा है. हम वेट कर रहे हैं हमारे यासीन भाई जो पिछले 2-3 पॉडकास्ट पहले आए थे उन्हें हम वापस बुलाएं किसी टाइम पे. कोशिश करेंगे देखते हैं अगले एक दो महीने में इंशाल्लाह वापस बुलाएंगे उन्हें. कोई अगर कोई अपडेट डेवलपमेंट आती है. मुझे पता था भाई तो बस तैयार है उनसे बात करने के लिए.
मैं तो कहता हूँ जिस तरह इंडिया ने RSS के लोग छोड़ दिए कश्मीर में तो पाकिस्तानी हुकूमत भी कुछ लोग छोड़ दें.
पाकिस्तान को इक्विवेलेंट क्या RSS का.
कुछ भी बना के फेंक
दें. हमारे पास RSS का कोई इक्विवेलेंट नहीं है उस तरह का.
नेक्स्ट बेस्ट थिंग
कुछ भी बना के भेज दें बस.
इफ यू लाइक दिस यू विल आल्सो लाइक दिस. Amazon में होता है.
यानी नेक्स्ट वीक तक मेरे ख्याल से वो इमरान खान की UN जनरल असेंबली में भी एक स्पीच हो जाएगी 27. तो फिर हम उसके बाद ज्यादा देख सकते हैं कि क्या
27 को
उसके बाद क्या अप्रोच होनी चाहिए.
हाँ.
अभी सेनेट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जो है उन्होंने की थी एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर ने बहुत एग्रेसिवली मुतालबा किया है कि हमें रेस्क्यू करना चाहिए कश्मीर को. तो अब हमें इस तरफ सोचना चाहिए हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं.
बट आई थिंक एक पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए. ऑलमोस्ट 46-50 डेज होने वाले हैं.
हाँ बिल्कुल.
इमेजिन करें कि मतलब आपकी लाइफ फ्रीज हो जाए 1-3 दिन के लिए. उसके बाद एक पॉइंट के बाद आके आप खुद भी इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. आपको जब बेसिक इनोमेटिव लाइफ आपकी मीट नहीं हो रही होती तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है. मैं ऑनलाइन पढ़ा था कि अगर आपके जो घर के सप्लाईज है ना फूड सप्लाईज मेडिकल सप्लाईज बंद हो गए तो मतलब दिन का एक टाइम पे कोई सायरन वायरन बजता है या किसी तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है और बोलते हैं जो करना है कर लो एंड इफ यू डोंट गो बैक टू योर होम्स विद इन दिस टाइम फ्रेम हो सकता है आपके साथ कोई इशू हो जाए. मतलब जिस तरह एग्रेसिव हुए हैं ये लोग
इस पे तो बकायदा पूरी रिपोर्ट्स अगर हम उस पर ही लेकर बैठे तो वो एक पूरा अलग पॉडकास्ट सही होगा कि किस तरह का टॉर्चर और यानी ऑपरेशन कश्मीर में हो रहा है. लेकिन आई थिंक
एक आखिरी चीज मैं स्पेंड करना चाहूंगा बाकी मेरा रियल आखिरी चीज आपको पता है या
लेकिन मैं पूछना चाहूंगा 40 दिन से ज्यादा हो गए और हमने गाना कब ड्रॉप किया था.
पता नहीं अभी तक गाना
इंडिया जा 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 उसका कोई असर हो रहा है. अगर वहां पर कर्फ्यू पे कोई हेल्प हो रहा है उनका
क्या हम उसे पॉडकास्ट पे प्ले कर सकते हैं उस गाने को.
मुझे
कॉपीराइट इशू हो जाएंगे शायद तो हम लोग
आई थिंक दैट वुड बी द लिस्ट ऑफ आवर कंसर्न्स. नहीं, एक आखिरी चीज, मैं आप लोगों का टेस्ट है यहाँ पे जो बैठे हुए, हमारे प्रोड्यूसर अदनान भाई बैठे हुए हैं. आज क्या दिन है, आज क्या तारीख है? सितंबर
20th.
आज क्या है?
फ्राइडे.
ओके, बट उसके दैट वाज नॉट द क्वेश्चन. यानी किसने हमारा पिछला हफ्ते का पॉडकास्ट सुना है? सुफियान ने तो सुना है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, सुफियान ने 10,000 दफा सुना है. तो क्या है सितंबर 20th? तो क्या है,
20 सितंबर को 9 दिन हो चुके हैं 9/11 हुए.
नहीं, पिछले पॉडकास्ट से रेलेवेंट है ये, हमने बात की थी पिछले पॉडकास्ट पे. सितंबर 20th को क्या है?
अच्छा, आज वो है 50 Area 51 की रेड चल रही है यूएस में.
नहीं नहीं, वो भी है, लेकिन हमने पॉडकास्ट पे वो डिस्कस नहीं किया.
मैं फ्लाइट मिस हो गई थी, मुझे भी जाना था वहाँ.
बहुत डिसअपॉइंटमेंट. ये ऐसी चीज है कि ये पूरे प्लेनेट से रेलेवेंट है. मैं हिंट्स दे रहा हूँ आप लोगों
को. क्लाइमेट मार्च, क्लाइमेट मार्च,
लाहौर क्लाइमेट. पूरी दुनिया में क्लाइमेट मार्च हो रही है और वो उससे जो है सिंक्रोनाइज कर रहे हैं.
ये मिथ है, कोई प्रूवन चीज नहीं है. ग्लोबल वार्मिंग एग्जिस्ट नहीं करती.
तो ग्लोबल
वार्मिंग इज अ ग्लोबल कंस्पिरेसी,
प्रोपेगेंडा है ये सब कुछ. बैठे हैं और इतना टेम्परेचर कम हुआ है यहाँ पर, मैं ब्लैंकेट लेकर अपने साथ
साथ. तुम्हें तो अगर इसका मतलब है, तुम्हें कुछ कह रहे हैं ना, कुछ जगह जो है खासतौर पे कुछ कोस्टल एरियाज में राइजिंग सी लेवल्स हैं, तो तुम उधर प्रॉपर्टी, तुम रियल एस्टेट टाइकून हो, तुम्हें ज्यादा पता है. विड यू इन्वेस्ट ओवर देयर?
राइजिंग सी लेवल है ना वहाँ पर.
हाँ,
तो मैं वहाँ पे एक मजार बना दूंगा. वो मैं अरेंज करवा दूंगा, मसला नहीं, लेकिन वो प्रॉफिट बहुत है उसमें.
सही है.
चलो, एनी हाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज इट फॉर द पॉडकास्ट टुडे. मैं बहुत
मशकूर हूँ आप लोग का जो अभी तक सुन रहे होंगे.
मैं होस्ट हूँ तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, ठीक है. मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साथ भाई का, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला. बहुत उनका बिजी रूटीन होता है, पता नहीं वो दिन में एक सिर्फ एक ऑड नंबर में वो जो है खाना खा सकते हैं. और
बिजनेस टाइकून,
बिजनेस टाइकून जाहिर सी बात है, पूरे अपने रियल एस्टेट एम्पायर को मेंटेन कर रहा
है. 15 मिनट के मैं दिन में 20 पावर नैप्स लेता हूं, मैं लगा नहीं सो सकता.
आजकल वो इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ रहे हैं किधर इन्वेस्टमेंट करना.
हाँ, कोई टिप्स देना चाहेंगे इन्वेस्टिंग टिप्स हमारे लिसनर्स?
अभी तो नहीं है, खैर अभी वो ये कि जो एरिया किसी भी हरिकेन वगैरह से हिट कर चुके हैं, तो वहाँ की अगर प्रॉपर्टी मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा.
साहब यानी ग्लोबल माशाल्लाह, सिर्फ पाकिस्तान में आप ग्लोबल रियल एस्टेट टाइकून है.
कोई ऐसा टिप है आपके पास? मैं वो देख रहा था कल परसों.
आम बंदे के लिए हो यार, हर कोई अब सुफियान की तरह थोड़ी है.
आम बंदा 9 साल इंतजार कर ले अगर पाकिस्तान में करना चाहता है. पाकिस्तान में 9 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी डाउन हो जाएगी,
फिर खुशहाली आएगी.
खुशहाली का मैं नहीं कह सकता कुछ. प्रॉपर्टी अलबत्ता डाउन होगी, तो उसको खरीदने का बेस्ट टाइम होगा 9 साल के अंदर. और अगर आपको कोई चीज बेचनी है अपनी प्रॉपर्टी जो यूजलेस है, वो 9 साल से पहले बेच दें.
तो ये अच्छी इन्वेस्टिंग टिप मिली है, बहुत शुक्रिया सुफियान भाई. आप
वैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते इसकी, अगर कोई आपका मसला हुआ तो आपका ही है, हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते.
कोई लीगल लायबिलिटी इस पॉडकास्ट में नहीं आनी चाहिए.
टिप है बस एक अच्छी सी.
तो लाइक अस ऑन फेसबुक, फॉलो अस ऑन ट्विटर, हम यूट्यूब पे भी हैं, हम साउंड क्लाउड पे भी हैं. प्लीज कमेंट करें साउंड क्लाउड पे,
पॉकेट कास्ट पे भी है.
पॉकेट कास्ट विच इज नाउ फ्री
ऑन द प्ले स्टोर. हम पॉडकास्ट एडिक्ट में भी लिस्टेड हो गए हैं अब. हम
iTunes में हम रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन बट वी आर वर्किंग ऑन इट.
एडिशनल चार्जेस में पर्सनली आके भी जो आपको सुना सकता हूँ, जो भी आप सुनना चाहें.
अच्छा, वो हमारा पेड वर्जन में होगा. क्या कहते हैं,
प्रीमियम
कौन सा होता है वो?
सब्सक्रिप्शन
नहीं, एक होता है यार, एक प्लेटिनम नहीं, क्या कहते हैं,
जो भी है, बस पैसे ज्यादा होने चाहिए.
हाँ, पैसा, साज अवेलेबल फॉर सेल. तो यही है. अंटिल दैट, सलाम फॉर द चौक.